اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. مرکز تصوف آستانہ اقدس سرکار خواجہ قطب الدین با اختیار کاکی مہرولی نیو دہلی سے تصوف کا یہ خادم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے. آپ سبھی کی علمانہ خدمت کرنے کے لیے آج کی ہماری بات چیت کا عنوان ہے فتویٰ. فتویٰ کسے کہتے ہیں؟ فتویٰ کب شروع ہوا اور اب فتوے کا کیا استعمال ہو رہا ہے؟ اس بارے میں ہم آگے بات چیت کریں گے اور کچھ سمجھنے کی کچھ سمجھانے کی کوشش کریں گے. فتویٰ لفظ عربی کا لفظ ہے اور یہ افتا لفظ سے بنا ہے اور افتا لفظ کے معنی ہوتے ہیں اسلامی رائے دینے کا طریقہ. کسی بھی موضوع پر کسی بھی مسئلے پر اسلامی رائے دینے کا جو طریقہ ہے اسے افتا کہا جاتا ہے. اور وہ جو اسلامی رائے اسلامی مشورہ دیا جاتا ہے جو لکھت روپ میں ہوتا ہے اسے فتویٰ کہا جاتا ہے. فتویٰ لفظ کے بارے میں اس غلام نے بہت تلاش کی لیکن یہ شروع کب ہوا اس کے بارے میں اس تصوف کے خادم کو کوئی بہت اچھی خبر نہیں مل سکی. ایسا مانا جا سکتا ہے کہ جب مذہب اسلام نے ترقی کی اور آگے بڑھا سماج میں پھیلا تو لوگوں میں جو چھوٹے چھوٹے مسئلے پیدا ہوئے اس کے سجھاؤ کے لیے اس کے حل کے لیے اس کے سولیوشن کے لیے جو اسلامی طریقہ ایجاد کیا گیا اسے فتویٰ نام دیا گیا. ہندوستان جیسے ملک میں جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے وہاں فتوے کی اہمیت نہیں ہے لیکن وہ ملک جہاں پر اسلامی حکومت ہے اور اسلامی حکومت کی بنائی ہوئی شریعت لاگو ہے وہاں پر فتویٰ بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ وہاں پر شہر قاضی کے پاس طاقت ہوتی ہے. فتویٰ کا مقصد ہوا اسلامی رائے. فتویٰ نہ ماننا ہندوستان میں گناہ نہیں ہے फतवे के मायने हैं इस्लामिक लीगल ओपिनियन, इस्लामी कानूनों के मुताबिक किसी मसले पर दी जाने वाली राय। फतवा हर आदमी नहीं दे सकता, जो फतवा दे सकता है वो कुरान और सही हदीसों का, मिलावटी हदीसों का नहीं, सही हदीसों का बेहतरीन जानकार हो और उसके लिए जो पढ़ाई की जाती है जिसे मुफ्ती के लिए कहा जाता है वो मुफ्ती हो। फतवा जबरदस्ती लागू नहीं कराया जा सकता, हिंदुस्तान में तो बिल्कुल लागू नहीं कराया जा सकता क्योंकि यहां कानून हुकूमत का तरीका डेमोक्रेसी का है। फतवा देने की कुछ शरायत हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ शर्तें हैं। फतवा कुरान के मफहूम को ख्याल में रखते हुए और सही हदीसों की रोशनी में दिया जाना चाहिए, नंबर एक शर्त। नंबर दूसरी, आलिम या बोर्ड जो फतवा दे उसके जो लोग हों, फतवा देने वाले जो हों, वो दिल से ईमानदार हों। नंबर तीन, फतवा मौका परस्ती और हुकूमत की खिदमत, यानी ऐसा फतवा नहीं दिया जाना चाहिए कि जो हुकूमत की फेवर या सियासी खिदमत को अंजाम देता हो, जैसे अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र आयत के मायने बदल के उसकी तफसीर बदल दी गई, यानी हुकूमती फेवरिज्म जो हक बात हो वो लिखी जानी चाहिए। और फतवे की जरूरत हो, ऐसा नहीं कि जिस चीज की जरूरत ना हो उस बारे में भी फतवा दे दिया जाए पहले ही। ये फतवे के बारे में बहुत हमने छोटा करके बातचीत की है। अब हम इसका दूसरा पहलू देख लेते हैं और ऐसा समझते हैं कि आज के दौर में फतवे की हालत। आज के दौर में अजीब अजीब से फतवे दिए जाते हैं जिन्हें देखकर एक आम दिमाग भी हैरान हो जाता है। एक फतवा आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ताजिया देखने से निकाह टूट जाता है, ये फतवा है। टेलीविजन पर गाने देखने से निकाह नहीं टूटता, फाहिश बातों से निकाह नहीं टूटता और जो दुनिया भर की बातें हैं उससे निकाह नहीं टूटता, ताजिया देखने से निकाह टूट जाता है। क्या आपकी समझ में आता है कि यह फतवा कुरान और हदीस की रोशनी में दिया गया होगा, आपका दिल गवाही देता है? और कुछ देखने से सड़क पर जाकर, जब हम सड़क पर निकलते हैं हजारों चीजें देखते हैं, शॉपिंग मॉल जाते हैं हजारों चीजें देखते हैं, शादियों में जाते हैं और ना जाने क्या क्या चीजें देखते हैं, उन सब चीजों के देखने से निकाह नहीं टूटता, ताजिया देखने से निकाह टूट जाता है। और फतवा सुनिए, अभी पिछले दिनों इस खादिम ने देखा, पढ़ा कि एक खास फिरके से ताल्लुक रखने वाले शख्स की नमाज जनाजा पढ़ने से 19 लोगों के निकाह टूट गए, और फिर उन 19 लोगों के लिए फतवा मंगाया गया, निकाह टूट गया, फतवे में आया निकाह टूट गए हैं उनके, फिर दोबारा निकाह हुए। अब ये नहीं मालूम कि निकाह टूटने से हलाला भी वाजिब हुआ या नहीं हुआ, निकाह तो टूट गए, अब इसके लिए अलग फतवा हो। बहरहाल जहां से यह खबर आई, पढ़ी गई, अखबारों में निकली है खबर भाई, अब फतवे की यह हालत हो रही है कि मोहल्ला, गांव, खानदान, बिरादरी में अपनी ताकत दिखाने के लिए, दूसरे को दबाने के लिए मजहबी तौर पर फतवे का इस्तेमाल किया जाता है और खुद उससे मुस्तफिद हुआ जाता है। उसके मुस्तफिद होने का तरीका या तो हलाला हो या सोशल तौर पर जुल्म करना हो, नाजायज तौर पर फायदा उठाना हो, गांव में मोहल्ले में अपना रुआब जमाना हो, ये सारी चीजें हो सकती हैं। बहरहाल ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक फिरके के इंसान की नमाज जनाजा में शामिल होने से 19 लोगों के निकाह टूट गए और उनके निकाह फिर दोबारा हुए, इस बारे में फतवा मंगाया गया था और फतवे के मुताबिक निकाह टूट गए थे। मुसलमानों, इस्लाम दुनिया का बेहतरीन मजहब है। मुसलमानों, क्या तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम हो? क्या हाल बना दिया तुमने इस्लाम का? इस्लाम रो रहा है, तड़प रहा है, फरियाद कर रहा है कि मेरे और टुकड़े मत करो, मेरे ऊपर और जुल्म ना करो। लेकिन हम लोग बाज नहीं आते, हम ना जाने क्या हो गया है हमें, कुछ गौर व फिक्र, कुछ सोचने का, कुछ नए कदम उठाने का वक्त है। अगर हमने अभी हो तो ये पहले जाना चाहिए था, लेकिन अगर अब भी हम अंधे बहरे होकर इस्लाम के नाम पर जो हमें दिया जा रहा है, जो पिलाया जा रहा है, उस पे बिना सोचे समझे चलते रहे तो फिर हमें बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए मजहबी तौर पर बहुत ज्यादा दानिश्वर, होशियार, दूरंदेश हो जाने की जरूरत है। न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।